ओत्समा यहूदित के खिलाफ अभियोग। नस्लवाद, श्रेष्ठतावाद और रंगभेद राय नहीं है। फासीवाद एक राजनीतिक रुख नहीं है। ये अपराध हैं, मानव गरिमा के खिलाफ अपराध, समानता के खिलाफ अपराध और स्वयं मानवता के खिलाफ अपराध। अधिकांश लोकतंत्रों में कोई भी आंदोलन जो खुलेआम नस्लीय या धार्मिक श्रेष्ठता की वकालत करता है उसे आपराधिक माना जाता है। संयुक्त राज्य में व्हाइट पावर या यूरोप में क्रिश्चियन पावर कहलाने वाली पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और उसका कानूनी दंडन किया जाएगा। फिर भी इसराइल में ओत्समा यहूदित यहूदी शक्ति, एक ऐसी पार्टी जिसकी विचारधारा ऐसे आंदोलनों का यहूदी समकक्ष है, सरकार में बैठी है। इतमर बेनविर के नेतृत्व में, जो एक दोषी नस्लवादी उकसावे वाला है, ओत्समा यहूदित कहानावाद का आधुनिक अवतार है, जो रब्बी मेयर कहाने द्वारा स्थापित एक फासीवादी विचारधारा है और इसके नस्लवाद और आतंकवाद के कारण प्रतिबंधित की गई थी। आज जो कभी आतंकवाद के रूप में प्रतिबंधित था, उसे सरकार में मुख्यधारा में शामिल कर लिया गया है और उन पश्चिमी नेताओं द्वारा इसका बचाव किया जाता है जो अपने देशों में ऐसी किसी आंदोलन को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह केवल पाखंड नहीं है, यह मिलीभगत है। काच से ओत्समा यहूदित तक, प्रतिबंधित आतंकवाद, पुनर्जनन। ब्रुकलिन में जन्मे रब्बी मेयर कहानी ने 1971 में काच की स्थापना की, जब उन्होंने संयुक्त राज्य में हिंसक यहूदी रक्षा लीग का नेतृत्व किया था। काच का मंच स्पष्ट था, अरबों से नागरिकता छीन ली जानी चाहिए और उन्हें इसराइल और कब्जे वाले क्षेत्रों से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। इसराइल को एक यहूदी धर्मतंत्र बनना चाहिए जिसे हलाखा यहूदी कानून के अनुसार शासित किया जाए। नील से यूफ्रेटिस तक के क्षेत्रों को मिलाकर महान इसराइल स्थापित किया जाना चाहिए। काच 1984 में क्नेसेट में प्रवेश किया और एक सीट जीती, लेकिन इसकी उपस्थिति ने इसराइल के राजनीतिक प्रतिष्ठान को हिलाकर रख दिया। कहानी ने खुले तौर पर अरबों के सामूहिक निष्कासन की मांग की और संसद के मंच से ही नस्लीय सफाई की भाषा का उपयोग किया। उन्होंने लोकतंत्र को कमजोरी और समानता को देशद्रोह करार दिया। प्रतिक्रिया तेज थी। 1985 में इसराइल ने बुनियादी कानून क्नेसेट धारा 7A में संशोधन किया, जिसमें एक प्रावधान जोड़ा गया जो उन दलों को प्रतिबंधित करता है जो नस्लवाद को उकसाते हैं या इसराइल को एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में अस्वीकार करते हैं। 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को बरकरार रखा ताकि काच को चुनावों से योग्य ठहराया जा सके, यह घोषणा करते हुए कि इसका कार्यक्रम मूल रूप से नस्लवादी और लोकतंत्र के साथ असंगत था। फिर भी काच के अनुयायियों ने अपने सक्रियतावाद को जारी रखा। 1994 में अपरिहार्य हुआ, उनमें से एक बारूक गोल्डस्टीन ने हेब्रोन नरसंहार को अंजाम दिया, जिसने रमजान की नमाज के दौरान 29 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। इस अत्याचार की निंदा करने के बजाय कई कहानावादियों ने गोल्डस्टीन को नायक के रूप में सराहा। इसराइल सरकार ने भारी दबाव में फिर काच और इसके सहायक संगठन कहानी चाय को आतंकवादी संगठनों के रूप में प्रतिबंधित कर दिया। संयुक्त राज्य, कनाडा और अन्य सरकारों ने भी ऐसा ही किया। हर मापदंड से कहानावाद को नस्लवाद, आतंकवाद और फासीवाद की विचारधारा के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन कहानावाद मरा नहीं, इसने खुद को ढाल लिया। 2012 में काच के पूर्व सदस्यों ने ओत्समा यहूदित की स्थापना की, एक ऐसी पार्टी जो खुद को नया बताती है लेकिन वही मूल विचारधारा आगे बढ़ाती है। बेवफा अरबों को निष्कासित करना, बिना अधिकारों के फिलिस्तीनी भूमि को मिलाना और यहूदी श्रेष्ठता को स्थापित करना, जो कभी इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने नस्लवादी के रूप में प्रतिबंधित किया था और सरकार ने आतंकवाद के रूप में प्रतिबंधित किया था, वह अब सत्ता के केंद्र में बैठा है। कहानावादी विचारधारा अपराध के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का रोम संनियम और नरसंहार संधि स्पष्ट करते हैं, ओत्समा यहूदित का कार्यक्रम राजनीति नहीं है, यह आपराधिक है। 1. रंगभेद, रोम संनियम, अनुच्छेद 7(1)(j) एक नस्लीय समूह द्वारा दूसरे पर व्यवस्थित दमन के माध्यम से प्रभुत्व के रूप में परिभाषित। ओत्समा यहूदित की नीतियां दोहरे कानूनी शासन, बस्तियों का विस्तार, समानता से इनकार, रंगभेद हैं। 2. जबरन स्थानांतरण, चौथा जिनेवा सम्मेलन, अनुच्छेद 49, कब्जे वाले क्षेत्रों में आबादी के निष्कासन या स्थानांतरण को प्रतिबंधित करता है। ओत्समा यहूदित खुलेआम स्थानांतरण की वकालत करता है, यानी फिलिस्तीनियों और बेवफा अरब नागरिकों को निष्कासित करना। 3. उत्पीड़न, रोम संनियम, अनुच्छेद 7(1)(h), नस्लीय या जातीय आधार पर किसी समूह के खिलाफ गंभीर अधिकारों का हनन। पार्टी का अरबों से अधिकार छीनने का कार्यक्रम उत्पीड़न के रूप में योग्य है। 4. नरसंहार के लिए उकसावा, नरसंहार संधि अनुच्छेद 3C, नरसंहार करने के लिए प्रत्यक्ष और सार्वजनिक उकसावा दंडनीय है, चाहे नरसंहार हो या न हो। अरबों को मारो के नारे, जो पार्टी के नेताओं द्वारा समर्थित हैं, इस परिभाषा के साथ ठीक मेल खाते हैं। ध्वज मार्च, खुले में फांसीवाद। जेरूसलम ध्वज मार्च वार्षिक रूप से ओत्समा यहूदित की आपराधिक प्रकृति को उजागर करता है। हर साल अतिनास्तिकवादी जेरूसलम की पुरानी नगरी के मुस्लिम क्वार्टर के माध्यम से मार्च करते हैं, अरबों को मारो और तुम्हारा गांव जल जाए चिल्लाते हुए। वे फिलिस्तीनी व्यापारियों पर हमला करते हैं, संपत्ति को नष्ट करते हैं और निवासियों को आतंकित करते हैं। उन्हें रोकने के बजाय पुलिस उनकी रक्षा करती है। इतमर बेन ग्विर अब राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एक बाहरी उकसावे वाला नहीं है। वह नियमित रूप से भाग लेता है। उसकी उपस्थिति एक समर्थन है और एक संकेत है कि यह उकसावा राज्य के आशीर्वाद के साथ है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसा आयोजन एक अल्पसंख्यक के लिए मृत्यु की मांग करना प्रतिबंधित होगा। प्रतिभागियों को गिरफ्तार किया जाएगा, आयोजकों पर नफरत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। इसराइल में इसे देशभक्ति के रूप में पवित्र माना जाता है। 26 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसराइल को दक्षिण अफ्रीका बनाम इसराइल मामले में एक स्थायी उपाय के रूप में नरसंहार करने के लिए प्रत्यक्ष और सार्वजनिक उकसावे को रोकने और दंडित करने का आदेश दिया। ध्वज मार्च इस उकसावे का प्रतीक है। इसे अनुमति देकर और इससे भी बदतर इसमें भाग लेकर इसराइल खुले तौर पर न्यायालय के बाध्यकारी आदेश का उल्लंघन करता है। निहितार्थ स्पष्ट है, अनुपालन के लिए ध्वज मार्च पर प्रतिबंध, कहानावाद को आपराधिक बनाना और ओत्समा यहूदित पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है, जैसा कि 1945 के बाद जर्मनी से नाजीवाद को आपराधिक बनाने की मांग की गई थी। इतमार बेन ग्विर की आपराधिक जिम्मेदारी। बेन ग्विर का रिकॉर्ड अतिवाद का एक संग्रह है। 2007 में नस्लवाद के लिए उकसावे और आतंकवादी संगठन काज का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया। 1995 में प्रधानमंत्री राबिन को धमकी दी, टेलीविजन पर राबिन की चोरी हुई कार के प्रतीक के साथ गर्व करते हुए, हम उनकी कार तक पहुंचे, हम उन तक भी पहुंचेंगे। हफ्तों बाद राबिन की हत्या कर दी गई। हेब्रोन के सामूहिक हत्यारे बारूक गोल्डस्टीन की पूजा की और वर्षों तक उनके घर में उसका चित्र रखा। रैलियों में अरबों को मारो के नारे लगाए। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री के रूप में वह पुलिस की निगरानी करता है जो नस्लवादी भीड़ की रक्षा करती है बजाय उन्हें दबाने के, जबकि वह बसने वालों को हथियार देता है और फिलिस्तीनियों को दबाता है। रोम संयम के तहत बेन ग्विर को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में निम्नलिखित के लिए अभियोग का सामना करना पड़ सकता है। मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में उत्पीड़न अनुच्छेद 71H डंडा। रंगभेद अनुच्छेद 71J डंडा। नरसंहार के लिए प्रत्यक्ष और सार्वजनिक उकसावा अनुच्छेद 25(3)(e) डंडा। रिपोर्टर्स बताती हैं कि इजरायली अधिकारियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सील किए गए गिरफ्तारी वारंट पहले से मौजूद हो सकते हैं। बेन ग्विर अपनी भूमिका को देखते हुए एक प्रमुख उम्मीदवार होगा। पश्चिमी पाखंड, विदेश में फांसीवाद का बचाव, घर पर निंदा। सबसे बड़ा घोटाला यह नहीं है कि ओत्समा यहूदित मौजूद है, बल्कि यह है कि इसे सहन किया जाता है और यहां तक कि इसका बचाव किया जाता है पश्चिमी सरकारों द्वारा। यूरोप में एक वाइट पावर पार्टी को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यहूदियों को मारो चिल्लाने वाला मार्च फांसीवाद के रूप में निंदा किया जाएगा और पुलिस द्वारा तितर बितर कर दिया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले राजनेताओं को अपमानित किया जाएगा और सार्वजनिक पदों से वंचित किया जाएगा। फिर भी यहूदी शक्ति को सामान्यीकृत किया जाता है। पश्चिमी नेता जो नस्लवाद और फांसीवाद का विरोध करने की घोषणा करते हैं, उस सरकार को हथियार देना और बचाव करना जारी रखते हैं जिसमें ओत्समा यहूदित शामिल है। वे घर पर सुप्रेमिसिस्ट की निंदा करते हैं जबकि विदेश में उन्हें गले लगाते हैं। यह पाखंड उनकी मानवाधिकार बयानबाजी की खोखलापन को उजागर करता है। यहूदी श्रेष्ठता को सहन करते हुए और सफ़ेद श्रेष्ठता की निंदा करते हुए पश्चिमी सरकारें मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता को धोखा देती हैं। निष्कर्ष फैसला। तथ्य निर्विवाद हैं। ओत्समा यहूदित काज का सीधा उत्तराधिकारी है जिसे नस्लवादी और आतंकवादी के रूप में प्रतिबंधित किया गया था। इसकी विचारधारा कहानावाद, फांसीवाद है, श्रेष्ठतावादी, नस्लवादी और हिंसक। इसकी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत रंगभेद, जबरन स्थानांतरण, उत्पीड़न और नरसंहार के लिए उकसावे का गठन करती हैं। जेरूसलम ध्वज मार्च, जिसे इसके नेताओं द्वारा समर्थित किया जाता है, एक राज्य संरक्षित नफरत रैली है जो जनवरी 2024 के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाध्यकारी आदेश का सीधा उल्लंघन करता है। इसका नेता इतमर बेन ग्विर व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी वहन करता है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोग का सामना कर सकता है। पश्चिमी नेता जो ओत्समा यहूदित को सहन करते हैं और उसका बचाव करते हैं, वे फांसीवाद के सामान्यीकरण में सहभागी हैं। नज़ीर स्पष्ट है। नूर्नबर्ग के बाद जर्मनी में नाज़ीवाद को प्रतिबंधित किया गया था, राजनीति के रूप में नहीं बल्कि एक आपराधिक साजिश के रूप में। यही सिद्धांत आज लागू होता है, कहानावाद को आपराधिक बनाया जाना चाहिए, ओत्समा यहूदित को बहिष्कृत किया जाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और इसे उस चेतावनी के रूप में याद किया जाना चाहिए जो यह है। फैसला, ओत्समा यहूदित एक राजनीतिक दल नहीं है, यह एक फांसीवादी संगठन है जो मानवता के खिलाफ अपराधों को फैलाने का दोषी है। नैतिक अनिवार्यता, ओत्समा यहूदित को सहन करना स्वयं मानवता के साथ विश्वासघात है। किसी भी रूप में फांसीवाद सफ़ेद ईसाई या यहूदी राय नहीं है, यह एक अपराध है और इसका विरोध किया जाना चाहिए, इसे आपराधिक बनाया जाना चाहिए और इसे पराजित किया जाना चाहिए।